मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं आप सबसे लोकतांत्रिक विधेयक इसके बारे में बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी घटनाओं को देख लेते हैं। अखबारों में आज आपने पढ़ा होगा, न्यूज़ में भी सुना है कि जो मेडिकल एजुकेशन है हमारे, उस मेडिकल एजुकेशन में सरकार ने रिजर्वेशन की घोषणा की है और ओबीसी के लिए 27% और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग होते हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की घोषणा की गई है। क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा कि इस बारे में आपको मैं सूचना दे दूं, हालांकि मालूम है मुझे कि यह सूचना आपके पास ऑलरेडी पहले से ही है। साथ ही साथ आपने अखबारों में यह भी पढ़ा होगा, खासकर जो हमारी शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति को लागू हुए 1 साल हो गए हैं, इस पर प्रधानमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं की हैं। उन घोषणाओं के तहत एक बहुत ही जो महत्वपूर्ण बात मुझे लगी वो ये है कि हमारे देश के लगभग 14 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अब 5 भारतीय भाषाओं में पढ़ाई होने लगी है। 14 इंजीनियरिंग कॉलेज, 5 भारतीय भाषाएं, जिसमें हिंदी भी है। अभी तक आप जानते हैं कि ज़्यादातर हमारी जो हायर एजुकेशन है वो इंग्लिश मीडियम से होती है, लेकिन इस शिक्षा नीति में ये व्यवस्था की गई है कि हम जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें भी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, तो उसके तहत यह व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जी का जो उद्बोधन था दोस्तों, उसके तहत खासकर 10 नई पहलों की शुरुआत की गई है। मैं उस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं, अखबारों में दिया हुआ है, पत्रिकाओं में भी आपको इसके बारे में पढ़ने को मिल जाएगा। आपकी सुविधा के लिए मैं कुछ पहल बता देता हूं, जैसे निष्ठा 2.0। इसमें यह है कि जो प्राइमरी स्कूल के साथ साथ जो हमारे मिडिल लेवल के जो टीचर्स हैं उनकी जो जरूरतें हैं उन जरूरतों के हिसाब से उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। दूसरा है सफल, इसमें खासकर जो सीबीएसई के स्कूल हैं उसमें 3री, 5वीं और 8वीं छात्रों का जो आकलन किया जाएगा वह आकलन मूलतः उनके सीखने की क्षमता के आधार पर होगा। इसी तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, यह किया गया है कि जो सभी स्टेज के जो छात्र होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उनको कोर्स करना पड़ेगा। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाएगा और इसके तहत 150 जो संस्थान हैं वो बकायदे हमारे यहाँ वो अपना सेंटर खोल चुके हैं। विदेश के जो संस्थान हैं, नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर, ऑनलाइन पढ़ाई के विकास के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि उनको जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो बहुत अच्छा हो। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, यानी कि सभी जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनको तकनीकी मदद दी जाएगी। तो इस तरीके से कुछ योजनाओं की शुरुआत की गई है और इसी में है एकेडमिक क्रेडिट फॉर बैंक स्कीम और दिव्यांग जनों के लिए सांकेतिक भाषा में पढ़ाई की शुरुआत। चूंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इसके मेंस में तो कम से कम पूछे जाने की संभावना मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। प्री में भी किसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्री में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, खासकर इनसे संबंधित जो योजनाएं हैं उनको लेकर के, तो इसके बारे में आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एक बहुत अच्छी खबर पढ़ने को मिली फ्रेंड्स, वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया की जो नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट है उसने भारत के 13 कलात्मक वस्तुओं को वापस भेजने का निर्णय लिया है। हमारी 13 कलात्मक वस्तुएं जो वहाँ की नेशनल गैलरी में प्रदर्शित की गई हैं वे भारत को मिल जाएंगी। क्योंकि आर्ट कल्चर आपके सिलेबस में है तो थोड़ी सी जानकारी तो होनी चाहिए, हो सकता है कि सीधे सीधे काम ना आए। इसमें देखिए किस तरह की होती हैं, ज़्यादातर जब जो अभी चीज़ें आ रही हैं वो मैंने देखा कि 11वीं 12वीं शताब्दी की ये वस्तुएं हैं जो किन्हीं कारणों से बाहर चली गई थी। उदाहरण के तौर पर जैसे कि डांसिंग चाइल्ड, एक नृत्य करता हुआ बच्चा, और संत संबंदर हैं। इसी तरह से राजस्थान के में जो लक्ष्मी और विष्णु की जो मंदिर, इसी तरह से राजस्थान की जो लक्ष्मी और विष्णु की जो मूर्ति है जिसे आप लक्ष्मी नारायण कह सकते हैं, दुर्गा महिष मर्दनी की मूर्ति जो गुजरात से है, तो इस तरह के कुल 14 वस्तुएं भारत को वापस मिलेंगी। तो बस थोड़ी सी आपके दिमाग में ये बातें दर्ज होनी चाहिए। कल इंटरनेशनल टाइगर डे था, अखबारों में इसके काफ़ी बड़े बड़े विज्ञापन भी आपने देखे होंगे। मैंने कल इसके बारे में इसलिए चर्चा नहीं की और आज भी मैं कोई विस्तार से चर्चा करने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि टाइगर पर हम लोगों ने काफ़ी बातें की हैं, लेकिन छोटी सी बात आपको जरूर बताना चाहूँगा जो कहा गया और अखबारों में भी आया है कि 70% जो बाघ हैं वो भारत में है, और बाघ के होने का मतलब केवल बाघ के होने का मतलब नहीं है, ये पूरे इकोसिस्टम को इंडिकेट करता है। यानी कि जहाँ बाघ होंगे वहाँ का जो इकोसिस्टम होगा, या कह लीजिए कि जो जैव विविधता होगी, वो प्रिजर्व होगी, संरक्षित होगी, तो ये उसको भी संकेतित करता है। एक जो महत्वपूर्ण बात है जो आपको अपने इस टॉपिक में ऐड कर लेना चाहिए, वो है कि भारत के जो 14 टाइगर रिजर्व हैं उन्हें कंजर्वेशन सिक्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता मिली है। ये विश्व स्तरीय प्रमाण पत्र है और इस बात के लिए दिया जाता है कि इन उद्यानों में टाइगर का जो संरक्षण किया जा रहा है, उनका जो रखरखाव किया जा रहा है, वो बहुत अच्छे तरीके से है। यानी कि जिस तरीके से उनका संरक्षण होना चाहिए, उस तरीके से संरक्षण किया जा रहा है। तो 14 हमारे जो टाइगर रिजर्व हैं उनको यह मान्यता मिली है, जो मैं समझता हूँ कि एक बड़ी बात है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इकोनॉमिक टाइम्स का एक एडिटोरियल कमेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत सरल सा कमेंट है, बहुत प्यारा कमेंट है, और उसमें खासकर कुछ दिन पहले ही एक समाचार आया था कि जो पूरी जो नगर उड़ीसा का जो शहर है, जो सिटी ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है, वहाँ अब बाकायदे नल से पानी आएगा और उस पानी को आप सीधे पी सकते हैं। मतलब इतना साफ पानी आएगा। सिंगापुर वगैरह में ऐसी ही व्यवस्था की गई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस एडिटोरियल कमेंट में आपको ये जानने को मिलेगा कि ऐसा कैसे संभव हुआ, कि हम किस तरीके से गवर्नेंस को बेहतर बना सकते हैं, किस तरीके से जो स्थानीय कम्युनिटी है उसको उसमें शामिल करके मैनेजमेंट को बेहतर कर सकते हैं, और इसमें बकायदे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं जो वीमेन्स के, उन्हें भी शामिल किया गया है, और ये सब आपके सिलेबस में है। तो इस पर आपको, मुझे लगता है कि एक छोटा सा प्यारा सा नोट तैयार कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आता हूँ आज के मुख्य विषय पर, और वह लोकतांत्रिक विधेयक। मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, पता नहीं यह शब्द सही है या नहीं है, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो कुल मिलाकर के ये है कि हमारे संसद से अभी विधेयक पारित हो रहे हैं। जब मैं संसद की बात कह रहा हूँ तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बात कर रहा हूँ। विधेयक पारित हो रहे हैं, क्या सही मायने में ये विधेयक लोकतांत्रिक प्रणाली से पारित हो रहे हैं? नहीं तो कैसे पारित हो रहे हैं? होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? यह सही है या गलत है? अगर सही है तो कैसे सही है, और गलत है तो क्यों गलत है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इस पर आप सब थोड़ा थोड़ा अपने स्तर पर विचार कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सोच करके देखिएगा। मैं आपको क्लू दे देता हूं कि देखिए, जो विधेयक बनता है कैसे उसकी शुरुआत होती है। पहले तो कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें जो मिनिस्टर्स हमारे होते हैं वो सब ये फैसला करते हैं कि किस विषय पर विधेयक बनाया जाना है और उनमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें उस मंत्रालय के मंत्री भी होते हैं कैबिनेट बैठक में। तो इसके बाद वो जो सारा मामला है, जो पॉइंट्स हैं, वो उस मंत्री को सौंप दिए जाते हैं, उस मंत्रालय के मंत्री को, कि भैया आप विधेयक तैयार कीजिए। तो देखिए, जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में कौन लोग हैं, राजनीतिक दृष्टि से वो लोग हैं, वे मंत्री हैं जो सत्ता में हैं, राइट। अब वो मंत्रालय को चला गया, अब मंत्रालय लॉ मिनिस्ट्री के मदद से बकायदे फिर वो एक विधेयक तैयार करता है। तो वहाँ भी मंत्री हैं सत्ताधारी पार्टी के हैं, जो सेक्रेटरी हैं वो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो तैयार करते हैं। जब वो तैयार हो जाता है तो फिर बकायदे चाहे तो कैबिनेट में ला सकते हैं या वैसे भी बात कर सकते हैं, कैबिनेट उसको अप्रूव कर देती है और कहा जाता है कि भाई इसे पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाए, राज्यसभा या लोकसभा में। जो मंत्री होते हैं वो उसे पेश कर देते हैं। यहाँ तक पूरा आप जो देख रहे हैं वो ये है कि जो कुछ भी किया गया है वह सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा किया गया, चाहे वो एक पार्टी की सरकार हो या संविद सरकार हो, उससे मतलब नहीं है। जब कोई भी विधेयक पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाता है तो इनफैक्ट तभी से सही मायने में राजनीतिक दृष्टि से उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। कैसे? अब इस बकायदे विधेयक पर बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, जो विपक्षी दल हैं अपनी अपनी बातें रखें, क्योंकि वो भी तो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उनकी अपनी सोच है, उनके अपने क्षेत्र के लोगों की जरूरत है, उनके अपने वहाँ एप्रिहेंशंस, चिंताएं, आशंकाएं हो सकती हैं। तो ये कब संभव हो सकेगा? ये तब संभव हो सकेगा जबकि उस पर बहस हो। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से संसद का सत्र तो चल रहा है लेकिन काम काज किस तरीके से हो रहा है आप जानते हैं ना। विपक्ष बायकाट कर रहा है, सरकार विधेयक पेश कर देती है, हंगामे के बीच बिना बहस के विधेयक पारित हो रहे हैं और एक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है बहस की, मतदान की, वो यहां दिखाई नहीं दे रही है। अब बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। देखिए, जिम्मेदार के लिए आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे सत्ताधारी पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। दोस्तों, इससे भी बात नहीं बनती है, मुझे लगता है कि एक तरफा सोच हो जाएगी, इसलिए क्योंकि फिर कामकाज कैसे होगा। और जो विपक्ष है, विपक्ष भी ये कर सकता है कि भाई ठीक है, उनकी जो आपत्तियां हैं उन्हें वो सुलझाए एक दो दिन करने के बाद और फिर से वो बहस में भाग ले। तो विपक्ष ऐसा नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर विपक्ष चाहे तो हमारी पूरे विधेयक की जो प्रक्रिया है उसे अनंत काल तक बाधित कर सकता है, जो कि हमारी जरूरतें हैं। तो समाज का, प्रशासन का काम कैसे होगा। तो आप इसके जो भी प्रोस कॉन्स हो सकते हैं, बिल्कुल तटस्थ भाव से इस पर विचार करें, आपको मजा आएगा। और इस माध्यम से आप काफी कुछ हमारे संविधान को समझने की कोशिश करेंगे, और मुझे लगता है कि सिविल सर्विस की यह जरूरत भी है। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं शिविका मिश्रा, सूर्य प्रकाश और कुमार पंडित, आप सबका बहुत बहुत आभार। और फ्रेंड्स, अब 2 दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात होगी, तब और बातें होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने लोगों का भी ख्याल रखें, मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें। नमस्कार।